हरे कृष्णा। तो लोग बोले हरे कृष्णा। आज तारीख क्या है? 5 जून 2012। तो जहां पर सब लोग यानी कि जीसस क्राइस्ट बताते हैं बाइबल में, दो से अधिक यानी कितने भी, लेकिन दो से अधिक, एक नहीं, दो से अधिक लोग जहां पर एकत्र आते हैं और भगवान के नाम को पुकारते हैं, जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, तब बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेटेड। और ये शक्ति जो है ये समय के प्रभाव से नष्ट नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। समय के प्रभाव से सब कुछ नष्ट होता है ना, हमारी आयु, हमारा हेल्थ, हमारी जवानी, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण करने पर जो शक्ति उत्पन्न होती है वो समय के प्रभाव से नष्ट नहीं होती है। जितना आप क्रिएट करेंगे उतना अवकाश में वो बनी रहती है, इट इज़ ऑलवेज देयर इन द स्पेस। और ये भगवान के नाम का उच्चारण एकत्र होकर जब करते हैं तो उसका कई गुना लाभ होता है। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ में बैठकर जप किया, हाँ कुछ 20-25 मिनट किया, तो मुझे आप सब लोगों के साथ में बैठकर जो जप कर रहे हैं उन सबका लाभ मुझे हुआ। अगर मैं मेरे ऑफिस में बैठकर इसी समय जप करता तो मुझे उतना लाभ नहीं होता जितना मैं आपके बीच में आकर जब करता हूँ तब होगा। क्योंकि मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं, मैं भी भगवान का अंश हूँ, आप भी भगवान के अंश हैं, सब भगवान के बालक हैं। हाँ, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कुछ और है, लेकिन सब भगवान के बालक हैं। और सब जब एक साथ मिलकर भगवान को पुकारते हैं, समझो मुझे आपका नाम क्या है, हाँ चंद्र प्रकाश को पुकारना है और मैं उसको अकेले पुकार रहा हूँ, और समझो आप सब मिलकर उसको पुकारते हैं, तो कब वो मुड़ के देखेगा ज़्यादा? जब सब लोग पुकारेंगे तुरंत मुड़ के देखेगा, अरे क्या हो रहा है, सब लोग पुकार रहे हैं, क्या बात है, मैं अकेले पुकारूंगा तो ठीक है, जोर से पुकारूंगा तो देखेगा, लेकिन अगर सब लोग मिलकर उसको पुकार रहे तो तुरंत मुड़ के देखेगा, क्या हो रहा है, क्या कुछ काम है मेरे लिए, मैं आऊँ, कुछ मदद ज़रूरी है। वैसे मैं अकेले करूँगा भगवान के नाम का जप करूँगा तो भगवान देखेंगे मुझे, लेकिन जब सब मिलके करेंगे तो तुरंत देखेंगे। दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस, इसमें कोई बड़ी साइंटिफिक बात नहीं है, बहुत कॉमन सेंस है ये। इसलिए हम लोग सब मिलकर भगवान के नाम को पुकारते हैं। बाइबल में भी यही लिखा है, दोज हु कम मोर देन वन टुगेदर टू चैंट माई नेम आई एम प्रेजेंट अमॉन्ग्स देम, मैं उनके बीच में हूँ, ऐसे बाइबल में लिखा है। इस्लाम में लिखा है जमात, जमात यानी जब सब लोग एकत्र होते हैं मस्जिद में और अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, ही इज़ प्रेजेंट ओवर देयर। और हिंदू धर्म में यही लिखा है जब भगवान के नाम को एकत्र होकर कीर्तन में या बैठकर पुकारते हैं, हाँ यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ पर मेरे भक्त एकत्र होकर मुझे पुकारते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ, मैं मंदिर में नहीं हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ, जहाँ पर सब लोग एकत्र होकर मुझे पुकारते हैं वहीं पर मैं हूँ। और वो अलग अलग नहीं है, हाँ समझो आपने अल्लाह को पुकारा तो दूसरा व्यक्ति आया, और फिर जीसस को पुकारा तो दूसरा व्यक्ति आया, फिर कृष्ण को पुकारा तो अलग आया, फिर राम अलग आया, ऐसा नहीं है। आप किसी भी नाम से पुकारेंगे ना तो वो एक ही व्यक्ति है। एक बहुत सुंदर मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वाक्य सुना, आप जानते हैं ना कुत्ते को देखा ना आपने सब लोगों ने, कुत्ते का सबसे बड़ा गुण क्या है बताओ? हाँ स्वामी निष्ठा, यानी कि मालिक के लिए वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, निष्ठ रहता है, निष्ठा उसके मालिक के प्रति 100% रहती है। और ऐसे कहा गया है कुत्ते के बारे में कि समझो उसका मालिक जो है ना एक दिन समझो जोकर का वेश बना के आया, हाँ अगले दिन समझो वो राजा का वेश बना के आया, अगले दिन पैंट शर्ट पहन के आया, अगले दिन बुरखा पहन के आया, और किसी दिन सैनिक का वेश पहन के आया। वो किसी भी वेश में आएगा ना कुत्ता उसको हमेशा पहचानता है, अगर पूरा मुंह ढक के भी आया ना वो तो भी कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है। उसी तरह से हमें होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको कुत्ता होना चाहिए, कहने का मतलब यह है कि उसका सार बताना चाहता हूँ मैं, मॉरल क्या है उसका, उसका मॉरल है कि हमारे भगवान अगर राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, अल्लाह बनकर आए, जीसस बनकर आए, फिर भी हम उनको पहचानना चाहिए कि हमारे भगवान है, या कोई अलग नहीं है। तुम जो मैं अभी धोती कुर्ता पहन के आया, अब कल पैंट शर्ट पहन के टाई पहन के आया, और परसों सूट पहन के आया, और चौथे दिन समझो हाफ पैंट में आया, लेकिन मैं तो वही हूँ ना, मैं तो बदलने वाला नहीं हूँ, मैं तो सेम हूँ। कभी स्पोर्ट्स मोड में होगा, कभी भजन के मूड में होगा, कभी प्रवचन के मूड में होगा, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ ना। उसी तरह से आप भगवान को जीसस के रूप में पुकारेंगे, राम के रूप में पुकारेंगे, कृष्ण के रूप में पुकारेंगे, जगन्नाथ के रूप में पुकारेंगे, बुद्ध के रूप में पुकारेंगे, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग रूप में अलग अलग समय पर अलग अलग काम के लिए प्रकट होते हैं। तो अभी सीजन कौन सा है? अभी वो जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो रहे हैं। हाँ, सब लोग मोबाइल को बंद कर दीजिए। हाँ, क्योंकि मोबाइल का आवाज़ से सबका ध्यान जो है भगवान से ऊपर से उठकर मोबाइल की ओर में जाता है। इसलिए भगवान का नाम के बारे में जब चर्चा होती है, भगवान के बारे में जब डिस्कस करते हैं, तो केवल भगवान के बारे में डिस्कशन में ध्यान होना चाहिए, और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, तब उसका पूरा लाभ होता है। तो अभी रामनवमी का मौसम गया कि हमारे भगवान भी राम के रूप में आए थे, तो वो रामनवमी का उनका जन्म का मौसम गया। अभी ज्येष्ठ महीना शुरू हुआ और ज्येष्ठ महीने की 15 दिन भी खत्म हो गए, तो अभी कौन सा मौसम है? अभी जगन्नाथ जी का मौसम शुरू हो गया है। तो आज हम आपको ये विनती करना चाहते हैं, हरे कृष्णा, कि जगन्नाथ जी के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे आपको। हाँ, जगन्नाथ जी की जानकारी तो बहुत अनंत है, उसको एक घंटे में कैसे बता सकते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे ये मंगलवार को थोड़ा, अगले मंगलवार को थोड़ा, ऐसे ऐसे करके जगन्नाथ की रथ यात्रा के बाद में भी बताते रहेंगे आपको, अगर भगवान की इच्छा रही तो हम बताते रहेंगे आपको। हरे कृष्ण। तो कल का दिन जो था वो हिंदू कैलेंडर के तरफ से ज्येष्ठ महीने का पूर्णिमा का दिन था। स्कंद पुराण में लिखा है कि ये जगन्नाथ जी का अवतार दिन है, जगन्नाथ जी इसमें प्रकट हुए, और उसकी बड़ी लंबी कहानी है, उसको हम अगले बारे में बताएंगे आपको, बहुत लंबी कहानी है, शायद आपको 10 बार सुनेंगे तो भी आपको पूरी याद नहीं रहेगी, मुझे 15 बार पढ़ना पड़ता है फिर मुझे याद रहता है। और हर साल मैं दोबारा पढ़ता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। तो स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा ये जगन्नाथ जी का अवतार दिन है, और राजा एक बहुत भक्त राजा थे, उसका नाम था राजा इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न बहुत ही, यानी कि ब्रह्मा जी भी उसका गौरव करते थे, ब्रह्मा जी तो इज अ क्रिएटर, पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं, चार मुख वाले हैं, पूरा सृष्टि का जितने भी जीव हैं, हम लोग हैं, पशी है, पशु है, पक्षी है, मछली है, पेड़ है, सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, सारे लोगों को निर्माण करते हैं, वो भी राजा इंद्रदुम्न का बहुत आदर करते हैं। एक बार इंद्रदुम्न राजा ब्रह्मा जी को मिलने गए थे, उनको बुलाने के लिए कि आप नीचे आओ, जगन्नाथ जी का विग्रह उत्पन्न हो गया है, उसको स्थापन करने के लिए, उसका एस्टैब्लिश करने के लिए आप आ जाओ। तो ऐसे कहा गया था कि उस समय थोड़े ब्रह्मा जी थोड़े मीटिंग में बिजी थे, तो कुछ देर रुकाया उनको, उसके बाद में उनको अंदर बुलाया, और जब वो अंदर गए तो बहुत देर तक उनकी मीटिंग चलती रही, और बाहर बहुत देवता लोग इंतज़ार कर रहे थे। होता है ना ऐसा कभी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है बोर्ड रूम के अंदर, और बाहर बहुत लोग आगे पीछे कर रहे, क्या हो रहा है, हमारा टाइम था 6 बजे का, 6:30 बजे का, 6:30 बजे, 6:45 बजे का, लेकिन 7 बज रहे, 7:30 बज रहे हैं, मीटिंग ख़त्म नहीं हो रही, क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत देर तक मीटिंग चल रही, तो सारे देवता लोग जो है ना 33 करोड़, बहुत सारे बाहर वेटिंग में थे, उनका भी अपॉइंटमेंट था, लेकिन उनको अंदर नहीं बुलाया जा रहा था। तो फिर एक देवता अंदर गए, उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आपने देखे रखे हैं, वो बाहर सब वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारे देवता मेरे लिए वेट कर रहे हैं, इनसे कई गुना श्रेष्ठ है ये राजा इंद्रदुम्न, कि सब लोग जो है अपने अपने राज्य में भोग लेते हैं, एंजॉय करते हैं, राजा इंद्रदुम्न जो है वो भगवान का भक्त है, इसलिए उनको वेट करने दो, मैं इनसे मिलते रहूँगा, जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा तब तक मैं इनसे मिलते रहूँगा। तो आप समझ सकते हो कि राजा इंद्रदुम्न कितने महान भक्त थे, सारे देवता जो अधिकारी लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं ना, वायुदेव हवा का कंट्रोल करते हैं, वरुण देव सब सागर नदी उसका कंट्रोल करते हैं, और इंद्रदेव रेन्स का कंट्रोल करते हैं, और कई देवता कई चीज़ों का कंट्रोल करते हैं, सरस्वती ज्ञान का कंट्रोल करते हैं, ऐसे अलग अलग लोगों को डिपार्टमेंट बांट के दिया है, मतलब कितने बड़े अधिकारी वो, हाँ वाटर मिनिस्टर, एयर मिनिस्टर, पर्यावरण मंत्री होता है ना, धन मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, कितना इंपॉर्टेंट पोजिशन है वो, लक्ष्मी देवी इज फाइनेंस मिनिस्टर। सब लोगों को वेट करके भगवान इंद्रदुम्न को मिल रहे हैं ब्रह्मा जी, तो वो ब्रह्मा जी को फिर वो लेके नीचे लेके आते हैं। कई हजारों साल बीत जाते हैं ब्रह्मा लोक से नीचे आने तक पृथ्वी तक, और फिर जगन्नाथ जी का जो विग्रह आपके सामने दिखाई पड़ रहा है इसका प्रतिष्ठापना होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीटीज, भगवान को स्थापन कर देते हैं। तो वो दिन है ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कल का दिन। कल के दिन कितने लोग मंदिर में गए यहाँ पर, अरे बस दैट्स ऑल, इतना अद्भुत दृश्य था कल का, इतना अद्भुत, आप सब लोग वंचित रह गए उससे। कल का दिन का ऐसा महात्म्य है कि जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए तो जगन्नाथ जी इंद्रदुम्न से बातें करते थे, अभी तो बातें नहीं करते क्योंकि हम लोग उतने योग्य नहीं हैं, इसलिए वो मूर्ति के रूप में शांत खड़े हैं। जैसे हम चर्च में जाते हैं तो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति होती है, मदर मेरी की मूर्ति होती है, हमसे बात नहीं करते वो, क्योंकि हम लोग इतने एडवांस नहीं हैं, हम लोग खाली प्रार्थना करते हैं, हिम्स गाते हैं और चले जाते हैं। मंदिर में जाते हैं हम लोग भगवान कृष्ण को खड़े देखते हैं, राधा रानी को देखते हैं, वो हमसे बात नहीं करते हैं क्योंकि हम इतने एडवांस नहीं हैं, लेकिन हृदय से जो पुकारता है उसको वो रिस्पॉन्स देते हैं। आप चर्च में भी जाएंगे और एकदम दिल से पुकारेंगे उनको तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, कभी आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि भगवान है। हम लोग खाली हमारा बोलते ना, हमारा टेलीफोन में अभी तक कनेक्टिविटी दिया नहीं ना, अभी तक खाली इंस्ट्रूमेंट खरीदा है 50,000 का, लेकिन कनेक्टिविटी लिया नहीं अब तक, तो कैसे बात करेंगे उससे, कितना बड़ा भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो बात कर सकते हैं क्या, पहला कनेक्टिविटी होना चाहिए, फिर नंबर घुमाएंगे फिर नंबर लगेगा, बिजी नहीं होगा तो बात होगी। वैसा ही हमारा कनेक्टिविटी होना चाहिए, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको मोबाइल की तरह समझ सकते हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है इसके अंदर जब तक वहाँ की कनेक्टिविटी नहीं है तब तक वहाँ बातें नहीं हो सकती हैं, खाली दूर दूर से हाथ दिखा सकते हैं बस ऐसे। इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है ये भगवान के साथ कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए दिया है, और अगर हम मनुष्य बनने के बाद में भगवान से कनेक्टिविटी पैदा नहीं करते हैं तो उसे कहा गया है कि वो जानवर की तरह है, क्योंकि जानवर के इंस्ट्रूमेंट में कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। जैसे कि ये रिकॉर्डर है, इसमें कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, तो मोबाइल की हो सकती है क्या, इसमें खाली रिकॉर्डिंग होता है, इसमें हम फोन पे आपसे बात नहीं कर सकते, इसको हम एम्पावर भी नहीं कर सकते हैं कनेक्टिविटी नंबर देकर, क्योंकि ये जो है ना ये खाली रिकॉर्डर है। मोबाइल है क्या आपके पास, ये होगा ना ये, तो इसको आप कनेक्टिविटी दे सकते हैं, वोडाफोन रिलायंस हाँ और कौन सा होता है आइडिया एयरटेल एयरसेल दे सकते हैं, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए योग्य है, इसको आप एम्पावर करके इसको चार्ज करके आप लोगों से बातें कर सकते हैं। तो उसी तरह से मनुष्य का शरीर जो है वो इस मोबाइल की तरह है, इसकी तरह नहीं है, वो डायरेक्टली भगवान से कनेक्टिविटी हो सकती है। वो कनेक्टिविटी करने के लिए हमको आपको सबको मिलकर भगवान का शरीर मनुष्य का शरीर दिया गया है। तो वो ब्रह्मा जी नीचे आते हैं और भगवान इंद्रदुम्न से बात करते हैं राजा से, और वो कहते हैं जहाँ मेरा मंदिर तुमने बनाया है, बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं, इतना भव्य मंदिर बनाते हैं, कभी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे ना हम आपको यात्रा में लेके जाएंगे तब आपको दर्शन होगा जगन्नाथपुरी का, इतना भव्य मंदिर है, इतना भव्य मंदिर है कि उसको उसकी एक दीवार भी तोड़ नहीं सके कोई, अंग्रेज लोग भी आए मुसलमान लोगों का भी आक्रमण हुआ मुगल लोगों का उस समय, तो उसकी एक पत्थर को भी कोई तोड़ नहीं सका, इतना विशाल मंदिर है वो। कहते हैं कि एक एक मीटर की उसकी दीवाल है, एक मीटर मतलब कितने होते हैं 3.5 फुट होता है, 3.5 फुट की एक दीवाल, ऐसे शिलाओं से मंदिर बनाया वो, और एक शिला ऊपर से कभी गिर गई थी किसी कारण से उसको कोई हिला नहीं सका अभी तक, इतना भव्य मंदिर वहाँ पर पर्वत पर बनाया गया है, उसका नाम है नीलाचल, नीलाद्री, नील पर्वत, उस पर जो मंदिर बनाया गया है, तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि मेरे मंदिर के जो पटांगण में एक कुआं खोदवाओ और उसी कुएं के जल से मुझे आपको अभिषेक करना है आज के दिन जहां पर मैं प्रकट हो गया, मतलब उनके बर्थडे के दिन। तो इंद्रद्युम्न राजा जो है वो कुआं खोदते हैं उधर, और 108 गोल्डन मटके में से पानी लेकर जगन्नाथ जी के ऊपर चंदन डालकर उसका अभिषेक करते हैं। ब्रह्मा जी करते हैं, फिर इंद्र करते हैं, फिर नारद मुनि करते हैं, फिर जैमिनी ऋषि करते हैं, राजा इंद्रद्युम्न करते हैं, ऐसे सभी देवता मिलकर भगवान को ब्रह्मा जी की उस उपस्थिति में, ब्रह्मा जी चीफ है उनके सबके, वो सबके साथ में, ब्रह्मा जी के साथ में भगवान को वो अभिषेक करते हैं। और भगवान राजा इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि मेरा जो ये अभिषेक है, यानी कि स्नान जो कराना है वो पब्लिक में कराना है। हम लोग पब्लिक में स्नान करते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग घर में स्नान करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है कि हम सब लोग मिलकर नदी में या तालाब में स्नान करते हैं, करते हैं ना, कभी पिकनिक पे जाते हैं। तो वैसे ही भगवान एक साल में एक बार बताते हैं कि इस दिन, अभी पहली बार स्नान करा रहे हो, वो भी पब्लिक में होना चाहिए, सबको दर्शन होना चाहिए, इसलिए उनको ऊंचाई पर रखते हैं, मंदिर से बाहर लेके आते हैं। और जगन्नाथ जी जो है ना, जैसे कि ये दीवार है ना, यहाँ से छत तक इतने बड़े हैं जगन्नाथ जी, मेरे जैसे आदमी को उनको ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा ना तो आधा ही पकड़ पाएगा, इतने बड़े हैं वो। जगन्नाथ जी हैं, बलदेव हैं, सुभद्रा मैया हैं, तीन साथ में हैं, तो यहाँ खड़े हो जाएंगे तो पूरा ये भर जाएगा पूरा ऐसे, तो उनको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे सैकड़ों पुजारी एक साथ मिलकर उनको डोरी से बांधकर, कपड़े से पहला बांधते हैं, फिर डोरी से खींचते हैं ऐसे, फिर वो ऐसे ऐसे हिलते 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 बाहर आते हैं। बहुत सुंदर दृश्य होता है वो देखने में, बहुत आनंद आता है वो दृश्य। आपको सबको टीवी पर 21 जून को दिखाई पड़ेगा, ध्यान रखना 21 जून को रथ यात्रा है, जिस दिन यहाँ पर रथ यात्रा होगी मीरा रोड में, उसी दिन जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा होगी, और टीवी पर उसका लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, लाइव रिले हो जाएगा। तो उसमें जगन्नाथ जी को जब लेके आते तो ऐसा मालूम आपको पड़ेगा कि दूरी से खींचते हैं, 125-150 लोग एक साथ खींचते हैं तभी वो हिलते हैं, और ऐसे ऐसे हिलते हिलते हिलते, उसको कहते हैं पहंडी विजय। पहंडी यानी झूलना, स्विंगिंग, जंपिंग, बहुत सुंदर दृश्य होता है उसका, हम आपको बोलने से वर्णन नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा उसका, क्या मैं बोल रहा हूँ। तो वैसे उनको झुलाते झुलाते अपने मंदिर से लेके आते हैं, बहुत ऊंची जगह पर रखते हैं, बहुत सुंदर फूलों का कैनोपी बनाते हैं, छत्र बनाते हैं, उसके अंडर उनको रखते हैं, और फिर उसी कुएं से 108 सोने के कलश में जल लेकर उनका अभिषेक करते हैं, उस जल में चंदन डालते हैं, क्योंकि ऐसे कहा गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन साल में सबसे गर्म दिन होता है, हॉटेस्ट डे। कल था कि नहीं गर्म सबसे? इतना गर्मी है कल से खड़ा होने को नहीं हो रहा है, सो वन ऑफ द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो उस दिन भगवान को मंदिर से बाहर लाकर चंदन से डाले हुए पानी से ठंडा अभिषेक करते हैं, शांत आराम से एकदम भगवान को आनंद देने के लिए फूलों की वर्षा करते हैं उनके ऊपर, सुगंधी फूल, सुगंधी फूल ठंडे होते हैं स्वभाव से, माला पहनेंगे सुगंधी फूलों की तो ठंडा लगता है बहुत, इसलिए मोगरे की माला पहनाते हैं, उससे क्या होता है ठंडा अनुभव होता है। जिनको जिनको कफ प्रकृति होती है उनको माला पहनने से छींक आने लगती है, क्योंकि तुरंत ठंडक पैदा करता है। तो दिन भर सुबह से लेकर सूर्यास्त, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कंटिन्यूअसली भगवान के ऊपर जल डालते रहते हैं, और समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आती है तो भगवान बड़े ही ठंडे हो जाते हैं, और उनको सर्दी हो जाती है, फिर उनको बुखार आता है। तो जगन्नाथ जी जब उनको बुखार आने लगता है, छींकने लगते हैं, तो राजा इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि अब मैं 15 दिन रेस्ट लूंगा, सिक लीव 15 दिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं पब्लिक को दर्शन भी नहीं दूंगा, नहीं मैं अंदर रहूंगा और लक्ष्मी जी के साथ में अकेले रहूंगा, आप में सब लोग अंदर नहीं आना, जब समय होगा खाने का तब कुछ कुछ लोग अंदर आना, और रोज का खाना मत खिलाना, जड़ी बूटी दवाई सब चुन चुन के मुझे खिलाना, और ऐसा खाना खिलाना जो बीमार आदमी के लिए अच्छा होता है तो 15 दिन भगवान का दर्शन बंद हो जाता है, इसलिए अभी आज आपको दर्शन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा ना आपका चांस गया। कल पूरा दिन भगवान का दर्शन बहुत सुंदर था, और वो क्या दर्शन था उसकी कथा भी मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान इंद्रधनु को बताते हैं, जब उनको ठंड लगती है और छींकने लगते हैं तो मैं कहते हैं कि अब मैं अंदर चला जाऊंगा, अंतपुर यानी कि इनर चैम्बर्स में चला जाऊंगा और 15 दिन तक मैं आराम करूंगा। जब पूरा बीमारी ठीक हो जाएगा मेरा, जड़ी बूटी पाऊंगा, रस पीऊंगा, कषाय पीऊंगा, जो भी जरूरी है वो खाऊंगा, 15 दिन के बाद ठीक ठाक हो गए एकदम फ्रेश होके आऊंगा, तब मुझे रथ में घुमाने को ले जाना, मैं सैर करना चाहूंगा। ऐसे भगवान के लिए, क्योंकि भगवान पत्थर लकड़ी या पेंटिंग नहीं है, भगवान व्यक्ति है। प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप पत्थर की, संगमरमर की या लकड़ी की या पेंटिंग की, कागज की अवतार नहीं है, आप स्वयं व्यक्ति हैं। इसलिए भगवान वैसे लीला करते हैं लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी मुस्कान, हाँ देख रहे ना, बड़ी लंबी कथा है उसकी। और 15 दिन के बाद में फिर दर्शन देते हैं और फिर घूमने चले जाते हैं। तो ऐसे ही एक साल बीच में, कभी एक साल में एक गणेश गणपति का भक्त वहाँ पर आया था, जो गणपति को बड़ा मानता था कि गणपति ही परम भगवान है, ऐसे उसकी विश्वास थी उसका। वो गणपति का ही भक्त था, तो वो सब जगह गणपति को देखता था, अगर गणपति है तो वो उसको वंदन करता था, नहीं तो वंदन नहीं करता था। तो उसने सुना था कि जो विश्व के मालिक है, जगत के नाथ हैं, उनका अभिषेक होता है जगन्नाथपुरी में। उसकी दृष्टि से जगत के नाथ गणपति थे, तो आया जगन्नाथपुरी में उसी दिन और देखा सब लोग जल दे रहे हैं उनके ऊपर, बड़े ऊंचाई पे खड़े हैं, सब लोग आके जल दे रहे हैं चंदन का, सोने के कलश से। लेकिन देखते हैं भगवान को तो सुंड नहीं, उनकी हाथी का सर नहीं है, बोलते ये भगवान नहीं हो सकते क्योंकि तो उनका हाथी का सर नहीं और सुंड भी नहीं है उनको, इट डजंट हैव एलिफेंट हेड एंड ट्रंक। तो चले जाने लगता है कि ये यहाँ पर भगवान नहीं है, ये जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो जाने लगता है। तो जगन्नाथ जी को बड़ा दुख होता है, अरे मुझे देखने आया था लेकिन जा रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है। तो जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप लेते हैं और जाते जाते उसको पकड़ते हैं और मिलते हैं, बोले गणपति भट्टा रुको रुको, यही है वो जिसको आप देखने आए हैं, जिसको आप मानते हो, यही है वो, थोड़ा देर रुको, आप दोबारा जाके देखो उसको, आपको हाथी का सिर और सुंड भी दिखाई पड़ेगा। तो पहले उसको यकीन नहीं होता है, लेकिन वो ब्राह्मण जो है ना बड़े मीठी 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 बातें करके उसको कन्विंस करता है कि नहीं आपको आना है वापस, आके देखो आप। तो फिर बोलता ठीक है, तो वो जगन्नाथपुरी की सीमा तक पहुँचता है लेकिन दोबारा लौट के आता है। और जब लौट के आता तो क्या देखता है, जगन्नाथ जी और बलदेव जी दोनों हाथी का सर लेकर, बड़ी लंबी सुंड उनकी निकल रही है, अस्थि दंत भी निकल रहा है। तो दर्शन करके प्रणाम करता है, तब उसको विश्वास होता है कि यही जगन्नाथ, यही गणपति और यही सब कुछ है, यही परम भगवान है जिसको मानता हूँ, यही है वो। इसलिए हर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, हर स्नान यात्रा जो उत्सव कल हुआ, हर स्नान यात्रा के दिन शाम के समय गजवेश होता है। गजवेश यानी हाथी वेश, यानी भगवान को हाथी का श्रृंगार करते हैं। जगन्नाथ जी और बलदेव जी दोनों हाथी का श्रृंगार करते हैं और बीच में सुभद्रा जी को कमल का श्रृंगार करते हैं, कमल का श्रृंगार करके बीच में उनका मुख रहता है। तो कल शाम को काले हाथी के रूप में जगन्नाथ जी और सफ़ेद हाथी के रूप में बलदेव जी का दर्शन शाम तक 9 बजे तक था, दिन भर था। सुबह जब से अभिषेक हुआ तब से वो दर्शन आरंभ हो गया। तो एक ही दिन है साल में जहाँ पर जगन्नाथ और बलदेव हाथी वेश धारण करते हैं। उस भक्त की याद में एक छोटी सी घटना है, भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि छोटी सी भी चीज़ को याद रखते हैं वो, कभी भूलते नहीं वो। ऐसे कहा गया है कि अगर हम एक बार उनका नाम लेंगे, एक ही बार, लेकिन हृदय से, हाँ ऐसा मन कहीं बॉम्बे सेंट्रल में है और यहाँ पर नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं। जहाँ पर आप हैं वहीं पर आपका मन है और जहाँ जिसको पुकार रहे हैं उसी पर आपका मन है, और हृदय से पुकार रहे हैं, जैसे कोई बच्चा माता को पुकारता है ना, आपने सबने अनुभव किया होगा ना, बहुत सारी मदर्स यहाँ पर हैं। जब आपका बालक रो रो के पुकारता है तो कैसे पुकारता है आपको, नथिंग एल्स बट मम्मी, हाँ जब रोता है तो खाली मम्मी को ही याद करता है और मम्मी भाग भाग के आती है, रोना सुनकर वो भाग के आती है, क्या हुआ मेरे बालक को। कभी कभी थोड़ा सा भी रोया हल्के से भी तो मम्मी तुरंत भाग के आती है काम छोड़ के, क्योंकि वो पुकारना वैसे होता है। तो वैसे अगर हम एक बार उनको पुकारेंगे और बाद में उनको भूल जाएंगे, लेकिन वो एक बार पुकारा हुआ जो है उसको भगवान कभी नहीं भूलते। जब आपका संकट आएगा तो आपको साथ देने के लिए सामने आएंगे। इसलिए भगवान को पुकारने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब उनको पुकारेंगे तब शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सबसे बहुत ज़रूरत होगी तब उसको आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। कभी पुकारा हुआ था उसका रिस्पॉन्स आपको बाद में मिलेगा। इसलिए हम लोग साथ में आकर, सब लोग स्टाफ लोग है, कोई नर्स है, कोई हाउसकीपिंग है, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई मेंटेनेंस है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, सब लोग यहाँ बैठकर भगवान को पुकारते हैं। इसलिए पुकारते हैं कि पुकारने का प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब रियल में संकट आएगा तो वो प्रैक्टिस काम आएगी आपको तुरंत। हाँ, जब मैच खेलनी होती है ना मैच, तो साल भर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैच के प्योरिस्ट शाम को प्रैक्टिस करने से अब खेलने को आएगा क्या आपको? नहीं आएगा। हमारे क्रिकेटर्स होते हैं इंडिया के, साल भर मेहनत करते हैं, कई कहाँ टूर्नामेंट खेलते रहते हैं, तब टेस्ट मैच में फिर अच्छा खेलते हो। उसी तरह से मृत्यु जो है वो एग्जाम की तरह है, और साल भर प्रैक्टिस करना है उसके लिए। जब समय आएगा फिर प्रैक्टिस का लाभ उसमें होगा। इसलिए हमको सबको मिलकर उनको पुकारना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में याद करना चाहिए, उनके बारे में प्रश्न पूछना चाहिए, उनके बारे में समझने का कोशिश करना चाहिए। तब जाकर हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। और भगवान अलग अलग रूप में क्यों आते हैं? समझो मैं रोज़ समझो यही कुर्ता और यही धोती पहन के आऊँगा तो आप बोलेंगे क्या है। आप लोग भी अगर समझो रोज़ सफ़ेद साड़ी पहन कर आएंगे तो आपको बोर हो जाएगा ना। इसलिए आप अलग कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा, अलग अलग कपड़ा पहन के आते हैं। भगवान भी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। हाँ, 2000 साल पहले वो जीसस और यहोवा करके आए, उसके पहले अल्लाह बनकर दर्शन, मतलब दर्शन नहीं दिया, खाली वाणी सुनाया। उसके बहुत साल पहले, लाखों साल पहले राम बनकर आए, 5000 साल पहले कृष्ण बनकर आए, उसके कई करोड़ों साल पहले हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान बनकर आए। और भी ऐसा सामान्य रूप धारण करके नहीं आते, वो सिंपल रूप में नहीं आते, आधा सिंह और आधा आदमी नरसिंह भगवान, तो वराह रूप में आते हैं, कभी मत्स्य रूप में आते हैं, कभी कुर्म रूप में आते हैं, कभी परशु लेके आते हैं, कभी धनुष लेके आते हैं, कभी बाण लेकर आते हैं, कभी गदा लेकर आते हैं, कभी चक्र लेकर आते हैं, कभी कुछ भी लेकर नहीं आते हैं। मतलब कौन? चैतन्य महाप्रभु। नो अस्त्र नो शस्त्र, खाली भक्तों को लेकर आते हैं, वही शस्त्र है उनके। और सब मिलकर भगवान के नाम को पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी जगन्नाथ बनकर आते हैं। बहुत बहुत ऐसे कहा गया है कि विष्णु भगवान जो है ना, जो कारण उदक सागर में लेटे हुए हैं और उनके द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, उनके द्वारा ब्रह्मा जी का जन्म होता है, उनके द्वारा दूसरा विष्णु जन्म होता है पहले, फिर उसने उसके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर उनके द्वारा अलग अलग लोकों का निर्माण होता है, हेवनली प्लैनेट्स, अर्थली प्लैनेट्स, हेलिश प्लैनेट्स, सब निर्माण होता है। वो विष्णु जो है उनका एक बाल जो है उन्होंने निकाल के फेंक दिया, वो एक बड़े लकड़ी के रूप में समुद्र में प्रकट हुआ, उसको कहते हैं दारू ब्रह्म। दारू यानी लकड़ी, दारू यानी वो दारू नहीं जो हम समझते हैं संस्कृत में दारू का अर्थ है लकड़ी, और ब्रह्म यानी भगवान। तो वो जो ब्रह्मा विष्णु जी का सुंदर सुनहरा बाल था, वो ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स का लाइफ है ना, तो 50 साल के लाइफ में ब्रह्मा जी नील माधव के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। उसी पर्वत पर जहाँ पर आज जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी पर्वत पर ब्रह्मा जी के जीवन के पहले 50 साल, यानी कि बहुत करोड़ों करोड़ों साल होते हैं, अरबों अरबों साल होते हैं, वो 50 साल में वो नील माधव के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और वो 50 साल समाप्त होने के बाद में भगवान नील माधव का रूप जो है वो छोड़ देते हैं और गायब हो जाते हैं, और फिर वो जो भगवान का सर बाल बाल जो है वो समुद्र पे प्रकट होता है, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के समुद्र में, और समुद्र में पूरा प्रकाश हो जाता है, इतना प्रकाश होता है कि लोग देख नहीं पाते उसकी तरफ, इतना प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर राजा इंद्रद्युम्न जो है वो जाकर उस दारू ब्रह्म को खींच कर लेके आते हैं, हाथियों को लेकर रथ में लेकर खींच कर उसको बाहर लेते हैं और रथ में धारण करते हैं। फिर उस बड़े दारू ब्रह्म से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्तियां बनती हैं, और जगन्नाथ जी फिर प्रकट होकर उनसे बात करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंद्रदमन से बात किया उन्होंने कि मेरा अभिषेक करो, मेरे को यहाँ स्थापन करो, ब्रह्मा जी को लेके आओ। तो ये भी एक अद्भुत रूप है। हाँ, ये अद्भुत रूप कैसा है, इसको कहते हैं महाभाव। महाभाव को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको उसको समझा भी सकता नहीं क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ गया हूँ अब तक, कैसे समझाऊंगा आपको। लेकिन जो जो कुछ मैंने पढ़ा है उसका अर्थ यह है कि 8 प्रकार के प्रेम के भाव होते हैं। प्रेम, रति, स्नेह, मान, प्रणय, भाव, प्रेम, ऐसे 8 प्रकार के प्रेम के अलग अलग रूप होते हैं जो हम लोग अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं। लेकिन वो बड़ी शुद्ध अवस्था में, प्योर स्टेट में, भगवान के हृदय में होते हैं। भगवान के हृदय में होते हैं और राधा रानी के हृदय में होते हैं। और वो जब अभी हमारे मन में आपके लिए प्रेम है, लेकिन कभी कभी वो प्रेम ज़्यादा प्रकट होता है, जैसे आपका बर्थडे हो या आपने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, तो उस समय बहुत प्रेम प्रकट होता है। वो अभी हृदय में है लेकिन कभी कभी वो बाहर आता है, फिर हम गले मिलते हैं और प्रेम से गिफ्ट देते हैं और क्या क्या करते हैं उस समय। तो ये प्रेम जो है जब भी पूरी अवस्था में प्रकट होता है तो उसको महाभाव कहते हैं। जब भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति या राजा रानी के प्रति जब पूरा प्रकट होता है तो उसको महाभाव कहते हैं। और जब महाभाव प्रकट होता है तो भगवान उस रूप में रहते नहीं जिस रूप में वो होते हैं। जैसे कोई दुखी होता है तो अलग दिखता है कि नहीं वो, लेकिन अगर वो बहुत खुश हो गया तो अलग दिखता है कि नहीं वो, वही व्यक्ति है लेकिन उसका खुशी का दर्शन और दुख का दर्शन अलग होता है। वैसे जब वो बहुत खुश होता है तो आप बोलेंगे आज कुछ अलग ही दिख रहे हो, आज तो इतना खुशी से नाच रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना उनकी बातों में उतना आनंद दिखाई पड़ रहा है कि पता नहीं कितनी खुशी हो रही है, सागर जैसी खुशी हो रही है। वैसे जब भगवान को अति 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 परम आनंद होता है तो उसको महाभाव कहते हैं। और वो महाभाव में वैसे दिखते हैं, हमको अजीब लगते हैं क्योंकि हम जानते नहीं, हमारे अंदर महाभाव तो है नहीं, महाभाव के सादा भाव भी नहीं है बहुत कम भाव है हमारे अंदर इसलिए भगवान का महाभाव हम पहचान नहीं सकते। लेकिन कम से कम पढ़ के हमको समझना चाहिए कि ये भगवान के महाभाव का दर्शन है, जिसमें आप भगवान की बड़ी बड़ी आँखें होती है, बड़ी लंबी मुस्कान होती है जो दोनों कानों तक पहुँचती है, और बड़ी बड़ी आँखें होती है इतनी प्रेम से भरी होती है, इसलिए उनके अंदर लाल रंग का एक सर्कल है, देखो आप देख रहे हैं दोनों की आंखों में। जब किसी के प्रति हमारे हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई माँ अपने बालक को देखती है तो कैसे देखती हो, वो अपने बालक को आंख बंद किए बिना एक घंटा तक देख सकती है। आप बोलेंगे क्या देख रहे हैं इतना, आपको समझ में नहीं आएगा। वो जिसके मन में प्रेम है उसको पता चलेगा कि वो क्या देख रहे हैं। जैसे कोई प्रेमिका है और कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति है तो आंखों आंखों में कई घंटों देख सकते हैं। आप बोले क्या देखना है, तो एक प्यूपिल है, एक स्क्लेरा है, एक आईलिड है, एक आई लैश है, एक आईब्रो है, क्या देखना क्या उसके अंदर लेकिन जिसको प्रेम होता है वो घंटों घंटों आंखों में देख सकता है। भगवान भी ऐसे ही है। तो जब महाभाव प्रकट होता है, तो मैं तो माता का एग्जाम्पल दे रहा था, तो वैसे ही जब बालक जन्म होता है और बालक को गोद में माता लेती है तो कई घंटों तक उसको देख सकती है। वो बालक अगर किसी का आपके हाथ में आए तो आप देखेंगे और वापस दे देंगे उसको लेकिन माता अपने गोद में उसको कई घंटा रख सकती है, देख के रह सकती है। कई बार बाल पे हाथ घुमाएगी, फिर एक बाल पीछे करेगी, फिर कान के पीछे करेगी, फिर सर पे हाथ घुमाएगी, फिर आंखों पे हाथ घुमाएगी, बाल पे हाथ घुमाएगी, फिर वापस गाल पे हाथ घुमाएगी। मतलब इतना क्या है उसके अंदर। लेकिन ये प्रेम का रहस्य है। जिसको पता है बालक क्या होता है, जिसको बालक हुआ है वो उस प्रेम को समझ सकता है। तो हमारे भगवान जो है वो परम माता की तरह है। तो बड़ी बड़ी आंखें करके हम सबको देखते रहते हो प्रेम से, इसलिए उनके आंखों के अंदर वो लाल रंग जो है ना, जो माता के आंखों में बालक को देखते समय उत्पन्न होता है। इसलिए आप अगर आपके घर में छोटा सा बालक है तो जब समझो अभी आपके घर में बालक है तो आप अपनी माता वाइफ को देखना, जब वो बालक को देखती है तो उसके आंखों के अंदर एक लाल रंग की लाइन आती है। आपको गौर से देखना पड़ेगा उसके लिए ऐसे अपने आप नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने बालक को बड़े प्रेम से देखता है तो उसके आँखों में नेचुरल एक लालिमा आती है। उसी तरह से भगवान अपने भक्तों को निहारने के लिए आए हैं इस रूप में। उनका जो दर्शन है ये पूरा, ये अवतार जो है इस रूप में जो आए हैं, केवल भक्तों को उनको देखने के लिए और उनके लिए भक्तों को देखने के लिए वो आए हैं। इट इज ओनली आई सी यू एंड यू सी मी, दैट्स ऑल। यही उनके पूरे अवतार का रहस्य है, उनको केवल देखना है बस। पूरे जीवन का अगर आपको कल्याण करना है तो जगन्नाथपुरी में एक बार जाना है, उनको खाली देख के आना है बस, दैट्स ऑल। क्योंकि नारद मुनि ने वरदान मांगा था उनसे। जब नारद मुनि ने भगवान को इस अवस्था में देखा, इतने प्रेम की अवस्था में देखा, तो स्वयं प्रेम से पागल हो गए। वो तो भगवान के प्रेमी भक्त है, उनके अंदर बहुत प्रेम है भगवान के प्रति। लेकिन जब उसी भगवान को, उन्हीं भगवान को जब उन्होंने इस रूप में देखा, तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये जो मेरे मन में प्रेम प्रकट हो रहा है, इसका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इस रूप को देखकर मेरे मन में भी ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकट हो रहा है। तो वो पागल हो गए, एकदम नाचने लगे, कूदने लगे, उनके आंखों से आंसू आने लगे, शरीर में कंपन होने लगा, हाँ सब बाल खड़े हो गए शरीर के, आंखों से अश्रू आकर प्रेम से वो पुकारने लगे भगवान को। कुछ देर बाद थोड़े शांत हो गए, ने भगवान को स्पर्श किया तो भगवान वापस दूसरे रूप में आ गए जो पहले शरीर में थे। तो सबसे पहले नारद मुनि ने कहा क्या भगवान को कि मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। खुद तो उन्होंने आनंद का अनुभव किया है, लेकिन हम सबको नहीं भूले वो, क्योंकि तो नारद मुनि जैसे भक्त होते हैं, संत होते हैं ना, बहुत करुणा वाले होते हैं, दे आर वेरी कंपैशनेट, सब लोगों को हमेशा उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं, जो संकट में है उसको सुधारने का सोचते हैं, सबको मदद करने की सोचते हैं। तो खुद तो आनंद प्रेम का उन्होंने अनुभव किया, लेकिन जैसे ही होश में आए, सबसे पहले भगवान से वरदान मांगा, भगवान वादा करो कि आप इसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगे, ताकि आपको केवल देखकर जो प्रेम का अनुभव मैंने किया है वो सब लोगों को होना चाहिए, अकेले को मुझे कैसा होना चाहिए। कि प्रेम ऐसी व्यक्ति वो वस्तु होती है जो जब प्राप्त होती है तो वो खुद के पास संभाल कर रखते नहीं, वो जनता को बांट देते हैं। संत लोग ऐसे होते हैं, अकेले अकेले प्रेम का अनुभव नहीं करते, सबको प्रेम बांटते हैं, जो भी उनके पास है वो सबको बांटने का प्रयास करते हैं, सबके कल्याण के लिए। अगर मुझे इसका अनुभव करके मेरा कल्याण हो रहा है तो मैं कैसे शांत बैठूंगा, सबका कल्याण होना चाहिए। सबसे पहले अपने आनंद को भी भूलकर वो भगवान से वादा मांगते हैं कि आप इसी रूप में मुझे वादा करो कि दुनिया में आओगे, ताकि जब केवल जगन्नाथपुरी में आकर भगवान आपका, जब लोग केवल दर्शन करेंगे, केवल दर्शन करेंगे, तो वापस दोबारा दुनिया में कष्ट भोगने के लिए नहीं आएंगे। वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कष्ट, ये धूप सर्दी तूफान आंधी भूकंप, ये सब कष्ट भोगने के लिए दोबारा नहीं आएंगे। वो केवल एक बार वहां पर पहुंचने के बाद दर्शन करेंगे, आपका और उनका नजरों का मिलन होगा, वो आपको देखेंगे, आप उनको देखेंगे, प्रेम से देखेंगे, हाँ, और देखते रहेंगे। ऐसा जब होगा तो वो आदमी दोबारा दुनिया में जन्म लेकर कष्ट भोगने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले जब वो परदेश में गए तो राधा कृष्ण का मंदिर नहीं बनाया, सबसे पहले मंदिर जो बनाया वो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का बनाया, और जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे वर्ल्ड में उन्होंने चालू किया, और आज पूरे वर्ल्ड में सब जगह पर, सब भाषा बोलने वाले देशों में, सब जगह पर जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। दो दिन पहले कहाँ थी मालूम है? भाईंदर में रथ यात्रा। अभी तो कांदिवली में भी होती है, मलड़ में भी होती है, बोरीवली में भी होती है, मीरारोड में भी होती है, हर उपनगर में होती है, घाटकोपर में होती है, नागपाड़ा में होती है, बॉम्बे सेंट्रल में होती है, चर्चगेट में होती है, हाँ उधर सायन में होती है, उधर विद्या विहार में होती है, पता नहीं कितनी जगह पर होती है। क्यों होती है सब ये, क्यों कर रहे हैं सब भक्त लोग ऐसा? क्योंकि जो लोग उनको देखने के लिए उनके मंदिर में नहीं आ रहे हैं तो भगवान बोलते हैं मुझे ले चलो, मैं उनको देखने आता हूँ। हमारे बंदे हॉस्पिटल में कैसे हैं, मरीज लोग बिस्तर में पड़े हैं, आईवी लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, बिस्तर से बांध दिया गया उनको ना, वो निकल नहीं सकते वहाँ से। अगर टॉयलेट में जाना है तो किसी किसी लोगों को तो उधर ही टॉयलेट को पॉट देना पड़ता है, या किसी को आईवी निकाल के फिर जाके आ सकते हैं, तो नीचे मंदिर में कैसे जाएंगे? जगन्नाथ बोलते हैं आपकी मजबूरी है ना, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ ना आपको देखने के लिए। तो इस गाड़ी में बैठकर, ये उनकी बड़ी गाड़ी है, ये बहुत डेकोरेटिव, नॉट लाइक इंजन धुआं स्विच वो सब नहीं है, नेचुरल गाड़ी है एकदम। बड़े प्रेम से भक्त लोग उसको लेके जाते हैं, और भगवान अपने मरीजों को यहाँ के दर्शन देते हैं। वैसे ही वो साल में एक बार अपने मंदिर से निकल कर जगह 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 जाकर देश विदेश में जाकर सब भक्तों को दर्शन देते हैं। और जब भगवान के रथ में बैठे हुए लोग उनको देखते हैं तो भी स्कंद पुराण में लिखा है कि रथ में बैठे हुए भगवान को केवल देखने से ही जन्म मृत्यु से हम मुक्त होकर हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, परम मुक्ति प्राप्त हो जाती है, परम धाम में गति प्राप्त हो जाती है। ऐसा महात्मा है इसके अंदर। और केवल हिंदुओं के लिए नहीं है कि जब हिंदू लोग देखेंगे तो ही वो भगवान के धाम में जाएंगे, नहीं, जो जो मनुष्य है, कुत्ता बिल्ली भी है, अगर वो भगवान को रथ में बैठे हुए देखेंगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, हाँ, SC हो, ST हो, OBC हो, NT हो, कोई भी हो, अगर उनको भगवान को रथ पर बैठे हुए देखने को मौका मिलता है तो इस जीवन के अंत में वो दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पर कष्ट भोगने के लिए, भगवान के किंगडम में चले जाएंगे, राज्य में चले जाएंगे जहाँ भगवान रहते हैं परमानेंटली, वहाँ पर उनके साथ में रहने के लिए चले जाएंगे। इतना बड़ा पावर है इसके अंदर। आप ऐसा मत समझना कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं 4 to 7, हाँ, स्पिरिचुअल केयर में कोई काम नहीं है, चलो यार गाड़ी लेके घूमते हैं जरा इधर उधर घुमा के लेके आते, ऐसा नहीं है वो, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। जब मरीज लोग दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, बीमार हैं, कष्ट हो रहा है उनको, वेदना हो रही है, तब कभी कभी कोई मिलने नहीं आता है, कभी कोई मिलने आता है, लेकिन 3 लोग उनको रोज मिलने आते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं, उनका प्रसाद देते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, ये बड़ी भाग्य की बात है। ये रथ यात्रा इसलिए यहाँ पर आरंभ किया गया। आपको शायद पता नहीं होगा, आप भक्ति विधान हॉस्पिटल में काम करते हैं, सब जगह पर साल में एक बार रथ यात्रा होती है। अब मैंने कितने नाम लिए, काड़बा देवी का लिया, नागपाड़ा का लिया, कांदिवली का लिया, बोरीवली का लिया, घाटकोपर का लिया, विद्या विहार का लिया, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, हाँ, रशिया, मॉस्को, सबका नाम ले सकते हैं, लेकिन सब जगह पर केवल, जैसा अगर भगवान के 3 विग्रहों के एक सेट होगा, एक सेट, तो एक सेट जो है केवल एक बार रथ यात्रा में घूमता है, 2 बार नहीं घूमता है, एक ही बार बाहर निकलेंगे, सब जगह सफ़र करेंगे, सबको दर्शन देंगे, वापस मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर वो रोज़ घूमते हैं और रोज़ दर्शन देते हैं, वो जगह कौन सी है बताओ? भक्ति विधानता हॉस्पिटल। यहाँ की जो बड़े बड़ी मूर्ति है हमारे नीचे की, वो भी केवल साल में एक ही बार बाहर निकलते हैं, लेकिन ये जो है वो रोज़ बाहर निकलते हैं, रोज़ बाहर ही रहते हैं, वो कितने दयालु हैं, देखो अपना मंदिर छोड़कर बाहर ही खड़े रहते हैं, ताकि वो जो अगर गेट से अंदर आ रहा है, वो मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो मैं गेट पर आकर खड़ा रहता हूँ, ताकि गेट पर जो आएगा सब मुझे देखते रहेंगे। ये नहीं कि खुद का ब्यूटी दिखा रहे हैं लोगों को, लोगों को जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्त करने के लिए खड़े हैं वो। हम कभी कुछ समझते नहीं है, जो जो वस्तु हमको बड़े आसानी से और सस्ते में मिलती है ना, उसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। समझो 5,000 का शर्ट अगर कोई 50 रुपीज़ में दे रहा है, बोले नहीं, इतना गड़बड़ रहेगा उसके अंदर क्योंकि सस्ता मिल रहा है ना वो। अगर बड़े कोई दुकान के अंदर बहुत लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है, और आपको एंट्री नहीं मिल रही है, तो आपको लगता है हमको वो चाहिए, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है ना, बहुत कॉस्टली भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है, तो मुझे चाहिए वो। लेकिन वही अंदर का आदमी बोलेगा, ये लो, वही ला के दे, नहीं नहीं कुछ भी चीटिंग करता होगा, ऐसा आपको लगेगा। ये हमारी मेंटेलिटी है, ऐसा हम सोचते हैं। बड़ी कीमती वस्तु अगर आपको सस्ते में फ्री में ला के दिया ना, तो आपको लगेगा ये गड़बड़ है इसके अंदर। लेकिन आपने मेहनत किया, उसको पसीना बहाया, लाइन में खड़े रहे दिन भर, सिद्धिविनायक मंदिर में जाएंगे और आपका नंबर 15 घंटे के बाद में आएगा, तो आपको लगेगा आपने तो आज परम प्राप्ति कर लिया, ऐसा लगेगा। लेकिन वही सिद्धिविनायक मंदिर में अगर जो शनिवार का दिन में कोई है ही नहीं और आप जाके दर्शन करेंगे, आपको इतना आनंद नहीं आएगा उधर, क्योंकि आपने पसीना नहीं बहाया उस दिन। उसी तरह से भगवान के लिए अगर आप पसीना बहाएंगे तो भगवान की वैल्यू आपको समझेगी। तो उसी तरह से भगवान जो है वो इतनी कीमती वस्तु है, सर्व से सबसे ईश्वर संपन्न वस्तु है प्राप्ति करने के लिए, और वो अगर सब कुछ छोड़ के आपके लिए भाग के आपके पीछे आ रहे हैं, तो आपको लगेगा क्या है, ठीक है चलता है, क्या है इसमें बड़ी बात है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन हमें ऐसा लगने से भगवान की कीमत कम नहीं होती है, ये ध्यान रखना। बच्चे को अगर आपने हीरा हाथ में दिया तो बोला अच्छा गेंद है, वो गेंद से खेला, क्रिकेट से बैट से उड़ाया, उसको टुकड़ा कर दिया, उससे उस हीरे की वैल्यू कम नहीं होती है, क्योंकि बच्चा ने उसको फेंक दिया करके। किसी ने हीरा हाथ में लिया, अच्छा अच्छा है वो, कपड़ा धोने के लिए अच्छा है, उसको कपड़े से अच्छा घिसा, फिर आगे चला गया तो बच्चे उसके गेंद खेल रहे हैं उसके साथ में। एक कहानी है ऐसी, एक हीरा दिया किसी को, क्योंकि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज को, महाराज भगवान का नाम इतना पावरफुल है तो सब लोग क्यों नहीं लेते उसको। तो उन्हें कहा एक काम करो, ये हीरा लो और जाके लोगों को बांट के आओ, दे के आओ। तो उसने औरतों को दिया, तो औरत ने देखा अच्छा है ये बहुत। तो नदी किनारे कपड़ा धो रहे थे, उसने कपड़े का वो ब्रश के रूप में इस्तेमाल किया उसको घिसने के लिए। फिर वो आगे गया तो बच्चे लोग उसी थे हीरे से कैच कैच खेल रहे थे गेंद की तरह। जाके उसने महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्योंकि उनको उस हीरे की वैल्यू पता नहीं, इसलिए लगता है कि वो पत्थर है तो कपड़ा घिसने के लिए अच्छा है। बच्चे को दे तो बच्चा आपका माइंड कैसा चलाएगा, अरे गेंद की तरह खेलने के लिए अच्छा है तो वो गेंद खेलेगा वो। फिर किसी शादीशुदा औरत को दिया, अरे बोला अरे इतना इंपॉर्टेंट है, उसको गहने में डालो, सोने के अंदर उसको फिट करो और गले में पहनो उसको, और वो कपट में अंदर को चार चाबी घुमाना चाहिए, चार लॉकर के अंदर बाहर तक चार चाबी होना चाहिए उसका, इतना वो कीमती है, उसके लाखों करोड़ों रुपये कीमत है। लेकिन बच्चे के हाथ में हो या कपड़ा धोने वाले औरत के हाथ में हो या जिसको उसकी कीमत पता है उसके हाथ में हो, तीनों तरफ तीनों जगह पर हीरे की कीमत इतनी रहती है, वो कम नहीं होती है सस्ते से मिलने से। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको सब, तो भगवान का दर्शन आसानी से मिलने से या मुश्किल से मिलने से उनका वैल्यू कम नहीं होता है। अगर जाएंगे आप तिरुपति में तो 12 घंटा तड़पेंगे आप, तो आपको कितना दर्शन होगा, 1 सेकंड का, 3 सेकंड का दर्शन होगा, पता भी चलेगा ना क्या पहना है, उन्होंने दिखाई नहीं पड़ेगा, चलो हटो आगे से, 12 घंटे के बाद में 3 सेकंड, तो ले तिरुपति भगवान है, क्या भगवान है। और मीरा रोड के मंदिर में या जगन्नाथ जी का यहाँ खड़े बोलेंगे क्या है, तो घंटे कई घंटे खड़े को लाइन भी नहीं है इनके सामने, तो इम्पोर्टेंट नहीं ऐसा आपको लगेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको जो कृपा मिल रही है उसकी वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द मर्सी दैट वी आर रिसीविंग बाय द लॉर्ड थ्रू द होली नेम, थ्रू द होली फूड, थ्रू द एसोसिएशन, थ्रू द कॉमन प्रेइंग, एक साथ बैठकर पुकारना, उनके नाम की कृपा, उनके प्रेयर की कृपा जो हम पर हो रही है, वो सबको हमको पहचानना चाहिए। अभी दुनिया में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसका हॉस्पिटल में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जन्माष्टमी होती है कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन ये हॉस्पिटल में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये भगवान की कृपा है, हमारा उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। भगवान कृपा करना चाहते हैं इसलिए वो आ रहे हैं, आपके पास में आ रहे हैं, आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, आप नहीं देख रहे फिर भी आपके आंखों के सामने आ रहे हैं। क्या कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मतलब क्या, मेरे नज़रों के सामने बने रहिए भगवान, ऐसा भगवान को बोल रहे हैं, और भगवान भी वैसा कर रहे हैं, आपके नज़रों के सामने हमेशा उपस्थित रहते हैं। कहीं भी देखेंगे आपको जगन्नाथ, हॉस्पिटल में आएंगे तुरंत प्रभुपाद के बाद में जगन्नाथ खड़े देखेंगे, तो भगवान की कृपा है ये हमारे पर। तो अभी ये जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव अभी सीजन शुरू हो गया है, तो अगले मंगलवार को भी आप आइए, आप सब लोगों को उसकी कहानी बताएंगे जगन्नाथ के बारे में, बहुत सुंदर सुंदर कहानी है। जगन्नाथपुरी ये अद्भुत क्षेत्र है और उनकी कहानियाँ सब अद्भुत कहानियाँ हैं, जो कॉमन कहानियाँ नहीं, एकदम अनकॉमन कहानियाँ हैं, असामान्य कथा है उनकी। तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जगन्नाथ रथ यात्रा जब होगी तब पूरी जानकारी के साथ में आप जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेंगे, ऐसा ही भाग नहीं लेंगे, पूरी जानकारी के साथ पूरा महत्व समझ के पूरा उसका लाभ लेकर आप खड़े रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं और माता देख रही है बालक को, उसमें अंतर है ना, वैसे अभी देख रहे हैं और समझने के बाद देखेंगे तो आपको उसका लाभ अलग मिलेगा। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का जो सीज़न है उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले। जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।